ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर भी है, गंभीर भी है और प्राण बाप दादाओं की प्रेरणाओं को लिए हुए हैं। आप देखेंगे वर्तमान समय प्राण बाप दादा की यही शुभ इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे निर्विकल बनकर अपने आप को भी निर्विकल बनाए, परिवार और साथियों को निर्विकल बनाए, समाज को निर्विकल बनाए। ये निर्विकल स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ और उच्चतम स्थिति है। इस स्थिति के सिंहासन पर स्थित होने के लिए हमें बहुत सारी शक्ति और खजानों की और पुण्य कर्मों की जरूरत है। इस उच्चतम स्थिति के लिए जब तक हमारे पास पुण्य कर्मों का खजाना नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी नहीं है या बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, मन वचन कर्म संस्कारों की शुद्धि नहीं है, अमृत वेला महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस उच्चतम स्थिति के सिंहासन पर स्थित होना बहुत बहुत मुश्किल है। ये तो हम सब जानते हैं ना, अच्छी तरह से जानते हैं ना। हम ये भी जानते हैं कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, इस रंगमंच के अंदर, इस नाटकशाला के अंदर अनेक अनेक आत्माएं हम पाठधारी हैं और सबके अपने अपने स्वभाव संस्कार है। उन सबके बीच में रहते हुए हम निर्विघ्न बन जाएं, ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अनुभव ये कहता है कि विघ्न आना तो स्वाभाविक बात है, विघ्न तो आएंगे, परंतु उन विघ्नों का हमारे जीवन के ऊपर कोई असर ना हो, हम उसे सुरक्षित रहे, विघ्न आए और चले जाएं, उसके लिए हमारे पास ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, धारणाओं का, दुआओं का खजाना जब होगा तो क्या होगा, विघ्न आएंगे और चले जाएंगे, उससे हमारी मनोस्थिति पर कोई असर नहीं आएगा। विघ्न तो अनेकानेक प्रकार से आते हैं और आते रहेंगे, जन से भी आएगा, मन से भी आएगा, तन से भी आएगा, बीमारियों के रूप से भी आएगा, प्रकृति प्रकोप के रूप से भी आएगा, आलस और अलबेलापन के रूप से भी आएगा, अनेकानेक प्रकार के विघ्न आएंगे, परंतु उसमें हमारी अवस्था अंगद के समान अचल अडोल स्थैर्य रहे, उसके लिए कुछ आवश्यक कदम या केंद्र बिंदु की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान तो हमारा, हमारे प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को दिव्य नेत्र दिया है, रियल आंख दी है। अगर वो दिव्य नेत्र या रियल आंख सदा खुली रहेगी तो विघ्न आएंगे और चले जाएंगे। परंतु अगर वो रियल आंख, वो तीसरा नेत्र, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की आंख जो हमें मिली है, हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वो आंख सदा खुली रहे। दूसरा, जो कुछ भी हम सुनते हैं, प्राण बाप दादा दादियां या जो कुछ भी हम सुनते हैं, उस पर हमारा मनन चिंतन चलते रहना चाहिए, क्योंकि जितना मनन चिंतन चलेगा उतना ही हमारे को दिशा भी मिलेगी, दशा भी मिलेगी। दिशा निर्देशन होता रहेगा तो क्या होगा, उससे भी हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होगी। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि संसार के अंदर गणेश जी को जहां तहां बहुत उनकी महिमा भी है, उनका पूजन भी है, उनका गायन भी है। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां गणेश जी की प्रतिमा नहीं हो। बड़े से बड़े स्थानों पर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जाएंगे तो आपको जहां तहां गणेश की प्रतिमा मिलती है और उनका पूजन भी करते हैं, और साथ साथ ये भी गायन करते हैं कि पहले गणपति गणेश को ध्याओ, पीछे भोलानाथ जी के दर्शन पाओ। तो गणपति जी को विघ्न विनाशक भी माना जाता है और बुद्धिवानों का बुद्धिवान देव भी माना जाता है और शिव पुत्र माना जाता है। अब वो गणेश जी किसी और का प्रतीक नहीं है, वो हम सब का प्रतीक है। हम सब गणेश पुत्र हैं और हम सबको उस परम शक्ति परमात्मा पिता ने दिव्य बुद्धि दी है, जो दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के द्वारा सदा जागृत रहे। अर्थात जितना बुद्धि का योग बुद्धिवानों के बुद्धिवान शिव बाबा के साथ लगा रहेगा, उतना बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी और उतना आने वाली घटनाओं को, आने वाली परीक्षाओं को, आने वाली परिस्थितियों को हम वाच कर सकेंगे और उसका समाधान भी कर सकेंगे। आप देखेंगे जब बिजनेसमैन नया पोता मेला आरंभ करती है या कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो पहले गणपति स्वस्तिका बनाते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, साथ शुभ लाभ, और साथ में और भी लिखते हैं गणेशाय नमः। मतलब वास्तव में देखा जाए ये जो स्वस्तिका है, जब हम स्व की स्थिति में स्थित रहने का बरसक प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहते हैं, तो विघ्न अगर आएंगे भी तो जैसे पंखा चल रहा है उसके इर्द गिर्द कुछ भी आएगा, पंछी कोई भी आएगा तो वो कट जाएगा। इसी तरह जब स्व की स्थिति में हम स्थित होंगे, स्वास्थिका माने स्वस्थिति के अंदर स्थित होना और स्वदर्शन चक्रधारी होकर के रहेंगे तो वो विघ्न विकर्ण न रहकर हमारे लिए एक परीक्षा पेपर में पास होने की चेतावनी हो जाएगी कि हमें इस परीक्षा पेपर के अंदर पास होना है, और पास भी तो ऑनर होना है। जब हमारा ये संकल्प दृढ़ होगा कि मुझे जो भी संसार के अंदर घटनाएं घटती है, जो भी मेरे सामने परीक्षाएं आती है, उन परीक्षाओं के अंदर मुझे परीक्षा को अपना पेपर समझ और उन्नति का साधन समझना है और ये समझना है कि मुझे पास विद ऑनर होना है, तो मैं ऐसा समझती हूँ जब हमारा ये दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे पास विद ऑनर होना है, तो क्या होगा? हमारा संकल्प, हमारा शुद्ध संकल्प, हमारा दृढ़ संकल्प एक ऐसा फॉर्म बना देगा, ऐसी स्थिति बना देगा जिससे जो भी परीक्षाएं आएंगी, जो भी विघ्न आएंगे, वो सहज रीति से इधर से आएंगे, इधर से चले जाएंगे, उससे हमारी मनोस्थिति के ऊपर कोई अंतर नहीं आएगा। परंतु अगर हम उन परीक्षाओं को परीक्षा ना समझ, उन तूफानों को तूफान अगर समझेंगे तो फिर घबराएंगे जरूर। तूफान आ गया, तूफान आ गया, मार देगा। परंतु तूफानों को तोहफा समझकर चलेंगे और विघ्नों को टाइगर समझ के, कागज का शेर समझ करके चलेंगे और उनके साथ खेलेंगे, तो क्या होगा कि उन विघ्नों का जो हमारे ऊपर एक दूसरे प्रकार का प्रभाव पड़ना होता है, वो ना पड़ करके एक और ही एक इनर पावर हमारी जागृत हो जाएगी और उन विघ्नों को हम हंसते हंसते ऐसे तय कर लेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हमने अपने जीवन के अंदर देखा, आरंभिक जीवन के अंदर बहुत परीक्षाएं आई, परंतु हमारा बाबा के साथ अटूट प्यार था, लव था, हमारा अटूट निश्चय था और उस निश्चय की इतनी बलिहारी थी और अटूट प्यार और अटूट संबंध होने के कारण इतनी शक्ति थी जो कि ऐसे लगता था इधर से हवा आई और उधर से निकल गई। उस हवा का, उन परीक्षाओं का, उन बातों का जैसे हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह आप यज्ञ इतिहास की झलकियों को बैठ करके पढ़ेंगे तो आरंभिक दिनों में यज्ञ के अंदर अनेक अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक अनेक प्रकार की परीक्षाएं आई, परंतु बाबा का अटूट निश्चय और बाबा को, बाबा ने साथी बना लिया, सारथी बना लिया और उस अपने साथी और सारथी के ऊपर इतना फकुर था बाबा को, जिसके कारण ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई परीक्षाएं आई और ही बाबा के मुख से ये निकलता था नथिंग न्यू, नहीं कोई बात नहीं, ये होना ही है ड्रामा के अंदर। तो ये तब हो सकता है, ये बोल तब अंदर से निकल सकते हैं जब हमने अपने पास बहुत श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर रखी हो, बहुत पुण्य का खाता जमा कर रखा हो और पवित्रता को अपने जीवन की सच्ची संपदा और सच्ची शान समझ रखा हो, अपना सच्चा धर्म समझ रखा हो, तब हमारे अंदर वो शक्तियां जागृत हो जाती है और शक्तियों का स्टॉक जिसके पास है, जिसके अंदर ये शुद्ध समृद्धि है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का अवतार हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूरज का बच्चा, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो जिसके पास ये समृतियाँ, ऊंची ऊंची समृतियाँ जागृत रहेगी, उनके आगे विघ्न कुछ भी नहीं कर सकेंगे। परंतु अगर हमारे अंदर उठते बैठते खाते पीते सोते जागते ये ऊंच समृतियां जागृत नहीं होती हैं, तो क्या होता है? फिर हम छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा फ्यूज उड़ जाता है और हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। परंतु वास्तव में देखा जाए सच्चे योगी के लिए कोई मोर पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं। सच्चे योगी के लिए जो निरंतर योगी है, बैलेंस माइंड होकर के चलता है, उसके लिए क्यों, क्या, किस लिए, ऐसे वैसे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब तो ऐसे क्वेश्चन तब उठते हैं जब हमारा अपने मालिक, अपने सच्चे साथी और साथी के साथ अटूट लव नहीं होता, हमारे निश्चय की नींव इतनी मजबूत नहीं होती है। तो हमें अगर सब प्रकार के परीक्षाओं से, सब प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो बार बार ये चेक करना होगा कि मेरे निश्चय की नींव कितनी गहरी है। कहते हैं एक बार बहुत सारे लोग नौका में सवार थे, तूफान आ गया और बहुत जबरदस्त तूफान आया, तो लोग हाय हाय, कोई कहता, कोई सोचने लगा मैं क्या करूं, कोई सोचने लगा क्या करूं, कोई उछलने लगा, कोई एक दूसरे के ऊपर दोष देने लगा। एक न विवाहित कपल बैठा था उसके अंदर। अब उसकी वाइफ भी चिल्लाने लगी कि क्या करना चाहिए, तूफान से अपने आप को कैसे सेफ साउंड करना चाहिए, परंतु जो उसका पति था वो निश्चिंत होकर के बैठा था और सारे लोग बहुत हलचल के अंदर थे। तो उसकी पत्नी उसको बोलती है कि भाई आपको क्या हो रहा है कि हम मौत के मुंह पर खड़े हैं और आप निश्चिंत होकर के बैठे। तो उसके मुख से निकलता कि मेरा जो मालिक है वो मुझे मार नहीं सकता, वो मेरा सहायक है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा पालक है। तो फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी तलवार सी कहो निकाली और उसके गर्दन पर रखी, परंतु वो निश्चिंत थी। तो उसने कहा अब तू क्यों निश्चिंत है? तो कहने लगी कि मुझे ये विश्वास है कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जब हमारा बाबा के साथ इतना अटूट संबंध होगा, हम उनके लव में लवलीन होंगे, तो हमारे पास इतनी शक्तियां होंगी, वो शक्तियां ही हमारी रक्षा करती रहेगी, हम उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे। बाबा की याद एक ऐसा सुरक्षा कवच है। जैसे आप देखेंगे सेना के अंदर भी देखो, जब युद्ध होता है दोनों तरफ से, जब उन्होंने लोहे का सुरक्षा कवच पहन लिया होता है तो लोहे को लोहा बड़ी मुश्किल से काटता है, तो वो निश्चिंत होकर के लड़ते हैं उसके अंदर। ऐसे ही अगर हम सब ने बाबा की याद का निरंतर सुरक्षा कवच पहन करके रखा होगा तो विघ्न बाल न बांका कर सकेंगे। परंतु अगर सुरक्षा कवच हमने निरंतर नहीं पहना है, दुआओं का खाता हमने भरपूर नहीं किया है, तो क्या होगा? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास, जिस पुरुषार्थी के पास दुआओं का खाता है, उस पुरुषार्थी के जीवन में, उस ब्राह्मण बच्चे के जीवन में बाबा की छत्र छाया है ना? और वो छत्र छाया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, वो छत्र छाया उसको ऐसे सेफ साउंड रखेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हमें अपने पास, हम सब पुरुषार्थियों को अपने पास दुआओं का खाता जमा करना है, और फिर उसके साथ साथ जिसका अमृत वेला पावरफुल होगा। आज हम देखते हैं अमृत वेला हम करते जरूर हैं, परंतु आधे से ज्यादा विश्रामपुरी की सैर करते हुए अमृत वेला करते हैं, आधे के ज्यादा अमृत वेले के टाइम आते ही नहीं है। समझते हैं हम तो भगवान के बच्चे हैं ही, हम तो सशक्त हैं ही, परंतु नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, अमृत वेला वरदानी वेला है। अमृत वेला ज्ञान सूर्य परमात्मा के शक्तियों को वितरण करने का वेला है। उस ज्ञान सूर्य पिता से शक्तियों की किरणें लेकर पहले अपने आप को सुरक्षित करना है और फिर अपने से अन्य आत्माओं को भी वो साकाश देना है, वो किरणें प्रदान करनी है, और वो शुभ भावना और शुभकामना की किरणें संजीवनी बूटी अपनी तरफ से देनी है, सद्भाव और सद्भावनाओं की संजीवनी बूटी सबको पिलानी है, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे ऊपर कोई भी विघ्न आएगा तो उसका असर नहीं होगा। परंतु अगर हमारा अमृत वेला पावरफुल नहीं है, अमृत वेला हम जागती ज्योत होकर के नहीं बैठे हैं, अमृत वेला हम डबल लाइट हाउस बनकर के नहीं बैठे हैं, तो लाइट हाउस की लाइट खुद ही अगर बुझी हुई है तो दूसरों को क्या रोशनी दे सकोगे, दूसरों के क्या विघ्न विनाश कर सकोगे, नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी लाइट हमेशा जब योग में बैठो तो यही समझिए कि मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ और डिवाइन इनसाइट हूँ। जब ये तीनों समृतियाँ हमारे अंदर अच्छी तरह से पावरफुल जागृत रहेंगी और उठते बैठते भी जागृत रहेगी, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि विघ्न आएंगे चले जाएंगे, आपके ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होगा। परंतु अगर अमृत वेला पावरफुल नहीं, अपने आप को डबल लाइट हमने नहीं समझा, जो बाबा बाप दादा कहते हैं कि तुम अपने आप को लाइट हाउस समझो, मार्ग प्रदर्शन करने वाले समझो, तो क्या होगा, हमारे अंदर वो शक्तियां ना होने के कारण फिर छोटी मोटी बातें हमारे को इफेक्टेड करती रहेगी। तो हमें कुछ परहेज भी करना पड़ेगा इस उत्तम स्थिति के सिंहासन पर स्थित होने के लिए, कई दोषों से अपने आप को ऊपर उठाना होगा। आप देखेंगे चलते चलते हम पुरुषार्थियों की जो वृत्तियां हैं थोड़ा टकराव में आ जाती है, जो दृष्टि है वो दोष दृष्टि बन जाती है, जो चिंतन है वो पर चिंतन बन जाता है। तो हमें अगर विघ्न विनाशक बनना है तो पर दर्शन, पर चिंतन, प्रस्तुति, पर दृष्टि के दोषों से ऊपर उठ करके रहना होगा और आलस और अलबेलेपन से भी ऊपर उठ करके रहना होगा। परमत मन मत जो पैदा हो जाती है उससे भी परहेज करना होगा, क्योंकि ये परमत और मन मत भी मनुष्य को दोषी बना देती है और फिर धीरे धीरे उसी के अंदर विचरण करते करते एक शक्तिशाली आत्मा भी कमजोर हो जाती है, दिशावहीन हो जाती है। और तीन और बातों से हमें परहेज करना होगा। आप देखिए, आप थोड़ा सोचिए अपने आप को कि तीन बातें भी चलते चलते आ जाती हैं। एक वहम की बीमारी, वहम शक अनुमान, वहम शक और अनुमान, ये तीन कमजोरियां व्यक्ति विशेष के अंदर चलते चलते लक्ष्य पूरा ठीक ना होने के कारण, मनसा पावरफुल ना होने के कारण, ये तीन बातें एक अच्छे पुरुषार्थी के जीवन में भी उसके जीवन की उमंग, उसके जीवन का उल्लास, उसके जीवन की उन्नति, उसका लक्ष्य के अनुकूल चलने की स्थिति से एकदम कमजोर कर जाती है। वह एक भूत है, शक एक बीमारी है, अनुमान एक जहर है। जहां भूत आ जाए, बीमारियां पैदा, शक की बीमारी पैदा हो जाए और अनुमान जहर के रूप में अंदर आ जाए, तो उसके पास व्यर्थ चिंतन ही चलेगा। वहम वाले को क्या होता है, आप देखेंगे वहम की बीमारी जिसके अंदर पैदा हो जाए तो वो क्या करता है, हर एक चीज को, एक अच्छे भले इंसान के अंदर भी वो सोचता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इस चीज को हाथ नहीं लगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। आप देखेंगे वो सारा दिन इसी में ही पड़ा रहेगा और दूसरों के ऊपर दोष आरोपित करता रहेगा। और जिसके अंदर वहम आ गया, वहम का भूत आ गया, तो आप देखिए संसार में किसी के अंदर कोई भूत प्रेत चिपट जाए तो उसकी हालत क्या होती है, हाँ? व्यर्थ ही संकल्प उसके पास होंगे। शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प, सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव सोच उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि उसके घर के अंदर भूत बैठा है, वहम का भूत बैठा है, शक की बीमारी उसको लगी है और अनुमान की जहर उसको घोल रही है नकारात्मक संकल्पों के रूप में। नकारात्मक संकल्प एक जहर के बराबर है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जैसे आप देखेंगे एक बहुत हरा बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे कीड़ा लग जाए, दीमक लग जाए, चंद ही दिनों के अंदर उस वृक्ष को वो सुखा देती है, उसकी हरियाली नष्ट कर देती है और वो एकदम रूप से भी कुरूप होने लग जाता है, उसकी दशा बहुत ही गलत हो जाती है, सूख करके कई बार कांटे जैसा हो जाता है। तो ऐसे ही आप महान पुरुषार्थियों के जीवन में न वहम होना चाहिए, न शक होना चाहिए और न ही अनुमान का जहर होना चाहिए। जब हम इन बातों से ऊपर उठ जाएंगे तभी हमारा जीवन उज्जवल होगा, तभी हम एक सशक्त पुरुषार्थी के रूप में होंगे, तभी हमारे अंदर हमारा लक्ष्य सामने होगा कि मुझे बनना क्या है, मुझे जीवन मुक्त बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे विघ्न विनाशक बनना है, मुझे सर्व प्रकार के संसार के बातों से ऊपर उठ करके चरती कला में जाना है। ये हम सब पुरुषार्थियों का लक्ष्य है, उद्देश्य है। परंतु आज अगर हम इन छोटी मोटी बातों को अपने जीवन के अंदर पालते रहेंगे तो उस उच्चतम स्थिति के अंदर नहीं पहुंच सकते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है कि भक्ति में कहा जाता है कि 7 दिन भी कोई भागवत का पाठ अच्छी तरह से सुनेगा, पढ़ेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो एक सेठ थे, उनको बहुत इच्छा हुई कि बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ खा लिया, बहुत कुछ धन इकट्ठा कर लिया, अब तो मुझे मोक्ष ही चाहिए। तो वो एक ऐसे आचार्य के पास गए, विद्वान के पास गए और कहने लगे मुझे मोक्ष चाहिए। तो कहा तुम 7 दिन सच्चे हृदय से मोक्ष भागवत का पाठ सुनेंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने घर जाकर के कह दिया कि अभी 7 दिन मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस समय मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करना है, मुझे और कोई काम नहीं करना। सब बातों से अपने आप को फारिग करके वो विद्वान को बुला लिया और वो उनको बहुत सच्चे हृदय से भागवत का पाठ सुनाने लगे और वो भी बहुत दिल से सुनने लगे। मतलब 7 दिन बीत गए, कोई मोक्ष नहीं मिला। फिर सात दिन ऐसे कई बार 7 दिन उन्होंने वो पाठ सुना, फिर भी मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला। तो वो विद्वान भी सोचते हैं कि कोई कमी रह गई है, चलो अपने आचार्य के पास चलते हैं, वो क्या बताते हैं। तो जब आचार्य के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई इनको मोक्ष की इच्छा है और इन्होंने कई बार भागवत का पाठ सुना है, परंतु अभी तक संसार से इनकी वृत्तियां जो उपराम होनी चाहिए, जो विदेहीपन की स्थिति का अनुभव होना चाहिए या जो मोक्ष की ओर इनका रुझान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, ऐसा क्या कारण है? तो आचार्य जी ने क्या किया, दो मोटी मोटी रस्सियां मंगाई, और वो मोटी मोटी रस्सियां विद्वान को भी हाथ पांव सब बांध दी, और उस सेठ को भी बांध दी, और दो कोठरियों के अंदर डाल दिया। आप सेठ जी सोचने लगे, आए थे मोक्ष प्राप्त करने, और ये तो मोटी मोटी जंजीरों से रस्सियों से बंध गए, ये क्या हुआ? और वो विद्वान भी सोचने लगे, सच्ची ये क्या हो गया, और ये रस्सियों से बांध दिया गया हम लोगों को। तो एक दिन वो सेठ बहुत छटपटा रहे थे, और वो पूछते हैं आचार्य को, दोनों आमने सामने कोठियों में पड़े थे, विद्वान को पूछते हैं कि भाई क्या है, हम आए थे मोक्ष पाने के लिए, यहाँ तो और ही बंदरों में बांध दिया, अब मैं रस्सी खोल कैसे खोलूं, अपने पांव की हाथों की कैसे खोलूं, कैसे इधर उधर जा सकूं? तो वो विद्वान कहता है, भाई मैं खुद रस्सियों में बंधा हूं, तो तेरे को रस्सियों से कैसे मुक्त कर सकता हूं? तो इतने में आचार्य जी आ गए, तो उन्होंने कहा क्या वार्तालाप हो रही है? तो कहा कि ये विद्वान यही कहते हैं कि मैं खुद रस्सियों से बंधा हुआ हूं, तो तेरे को रस्सियों से मुक्त कैसे कर सकता हूं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम खुद मोह की रस्सी, क्रोध की रस्सी, लोभ की रस्सी, आसक्तियों की रस्सियों से बंधे हुए हैं, कर्म बंधन की रस्सियों में बंधे हुए हैं, तो हम संसार को नई दिशा, नया मोर, नई जागृति, नई चेतना नहीं पैदा कर सकते। तो इसलिए हमें अपने अंदर अंतर्मुक्ता की कुटिया में जा करके अच्छी तरह से टटोलना है, अच्छी तरह से। बाबा कहता है अंतर्मुक्ता की कुटिया में बैठो, और बैठ करके अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, स्वचिंतन करो, समर्थ चिंतन करो कि मैं कितने तक रस्सियों से मुक्त हूं, मेरे कर्म बंधन की रस्सियों में मैं कितने तक अपने आप को मुक्त किया हुआ है, मैं कितने अपने आप को मोह की रस्सी से, लोभ की रस्सी से, लगाव की रस्सी से कितने तक मुक्त किया है, कितने तक मैंने अपने अंदर योग की अग्नि, योग की लगन की अग्नि, प्रभु प्रेम की लगन की अग्नि मैंने कितनी प्रज्वलित कर ली है अपने अंदर, जहां प्रभु प्रेम के योग लगन की अग्नि प्रज्वलित होगी अग्नि के आगे, तो बब्बर शेर भी डर जाता है। सुना, अग्नि के आगे शेर भी ठहर नहीं सकता। तो अगर मेरे प्रेम, प्रभु प्रेम की अग्नि, लगन की अग्नि में मैंने अपने आप को लवलीन कर लिया है, तो वो ज्वाला इतनी प्रज्वलित हो जाएगी जो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आप अगर रामायण, धारावाहिक रामायण का उपन्यास देखती हो, तो आपने देखा कि सीता जी ने कोई गलती किया जिसके कारण वो रावण की जेल में चली गई, परंतु रावण की जेल में बैठ करके भी उसने अपनी योग ज्वाला को इतना प्रज्वलित कर लिया था, जो रावण अनेक रूप रच करके आता था, अनेक रॉयल रूप रच करके आता था, अनेक प्रकार से सीता जी को मोहित करने के लिए आता था, परंतु वो प्रज्वलित अग्नि लकीर उसके बाहर ही रहता था, वो अंदर नहीं आ सकता था, वो सीता जी के ऊपर कुदृष्टि भी नहीं डाल सकता था। तो मैं मानती हूँ माया रावण है जो भिन्न भिन्न रूप रच करके आती है, परंतु अगर योग ज्वाला हमारी प्रज्वलित है, हम ज्वालामुखी हैं, तो ज्वालामुखी का साकाश दूर दूर तक फैलता है जब वो फटती है। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, मेरे अंदर उन दिव्य गुणों की जागृति है जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, या मेरे अंदर उस प्रभु प्रेम की ज्वाला इतनी प्रज्वलित है जो मेरे घर परिवार साथियों के पास उसका प्रवाह जाता है और उनको भी वो सेक पहुंचता है और वो भी चाहते हैं कि हम इस प्रकार से अपना जीवन जिए और हमारे को सत्कार की दृष्टि से देखते हैं। मुझे दीदी मनमोहिनी याद आती है, वो कहा करती थी कि जब तक तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार के लोग, उनके मुख से ये नहीं निकले, वो भले ब्रह्मा कुमार बनते या नहीं बनते, परंतु उनके मुख से ये नहीं निकले कि इनका जीवन बहुत अच्छा है, इनकी धारणाएं बहुत अच्छी है, इनकी सोच बड़ी अच्छी है, इनका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, इनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है और उसी राह के ऊपर ये चल रहे हैं, तो उनके अंदर आपके प्रति सत्कार की भावनाएं, सत्कार का दृष्टिकोण बन जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति होगी तब ये हम और आप विघ्न विनाशक बन सकेंगे। परंतु अगर हमने ये गहराइयों तक पुरुषार्थ किया ही नहीं तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो सबसे ऊंची मंजिल है। उस मंजिल पर हम सबको पहुंचना है, क्योंकि पहुंचाने वाला हमारा साथी और सारथी हमारे साथ है और वो हर वक्त हमारे को हीरो हीरो करता रहता है। परंतु हम हीरो बने तो ना, हीरो बने, हीरा बने तभी हो सकता है। अगर हम हीरो और हीरा नहीं बनते हैं तो बाबा भी और बात को अंदर से स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा बाप हमसे क्या चाहता है, हमें क्या करना चाहिए, हम किस दिशा में हैं, आज हमारी क्या कौन सी स्टेज है। हमें अपनी मनोस्थिति को बैठ बैठ करके देखना चाहिए और जहां जिस घर के अंदर, जिस सेंटर के अंदर मनसा दान देने का निरंतर कार्य चलता रहता है, मनसा योग जिसको बाबा कहते हैं, देने का निरंतर कार्य चलता रहता है, वो घर में कभी विघ्न आ नहीं सकते, वो परिवार में कभी विघ्न ठहर नहीं सकते, वो सेंटर में कभी विघ्न ठहर नहीं सकते। आपने कई सेंटरों का ऐसा उदाहरण सुना होगा, पास में आग लग रही है परंतु सेंटर पर कोई सेक नहीं है, पास में डाकू आतंकवादी आ रहे हैं पर सेंटर में जैसे ही आते हैं तो देवी देवी करके चले जाते हैं, आए और चले गए। क्यों? बाबा के यज्ञ के अंदर पुरानी स्त्रियों को अगर आपने सुना होगा तो वहां अभी कई बाबा को खत्म करने के लिए, ब्रह्मा बाबा को खत्म करने के लिए भी कई लोग आए, परंतु उनको सामने खड़ा है पर वो दिखाई नहीं देता। ये क्या है? ये उनकी अपनी मनोशक्ति का, अपने आप, अपने पुण्य कर्मों का, अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी उनके पास इतनी होती है जो एक छत्र छाया बन जाती है। तो भगवान तो हमारा साथी है, पर मैं ऐसा समझती हूँ हमारे पुण्य कर्म, हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, हमारी हिम्मत, हमारी छत्र छाया है, हमारी सहयोगी है। तो अगर इन दानों की तरफ हमारा अच्छी तरह से ध्यान होगा और हर बात को हम बाप दादा दीदी दादियों को अपनी कसौटी समझ लेंगे, उस कसौटी पर अपने आप को सामने रख करके देखेंगे कि इनके जीवन में और मेरे जीवन के त्याग में कितना अंतर है, वैराग में कितना अंतर है। आज हम कहते हैं वैरागी हैं, ठीक है, हमारा वैराग नीरस नहीं है, हमारा वैराग ज्ञान युक्त है, भाग्य हमारे साथ है, इसलिए हमारा वैराग दूसरे प्रकार का है। परंतु बिना वैराग के, वैराग बीज है, त्याग और तपस्या उसका फल है। और जब तक वो बीज हमारे अंदर नहीं है, तब तक अच्छी प्रकार से न त्याग होगा, न तप होगा, न फाउंडेशन हमारा मजबूत होगा। तो जब फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो विघ्न तो आएंगे और हम हलचल के अंदर विचलित होते रहेंगे, है ना। तो अभी आज बट्टी के अंदर आप सब आए हैं, तो मेरी यही शुभ भावना है कि आज आप अपना यह संकल्प इतना दृढ़ कर लो, इतना गहरा कर लो कि मुझे विघ्न विनाशक बनना है, मैं हूं ही विघ्न विनाशक। जब ये बात मेरी कॉन्शियस के अंदर आ जाएगी कि मैं हूं ही विघ्न विनाशक, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, है ना, तो क्या होगा, विघ्न ठहरेगा, मेरी सोच उसको दूर से ही भगा देगी, मेरे संकल्प उसको दूर से ही भगा देंगे। तो इसलिए भट्टी का ही फायदा आप उठा करके जाइए। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक सवेरे आपको व्यर्थ मुक्ति के ऊपर भी बताया गया और अभी निर्विघ्न स्थिति के ऊपर बताया गया है। तो ये संकल्प अभी अपने साथ बांध लीजिए अच्छी तरह से कि मुझे विघ्न विनाशक बनना है। अपने प्यारे प्राण बाप दादा के संकल्पों को साकार करना ही है, ठीक है। उसके लिए तीन चार और धारणाओं की आवश्यकता है, जो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना करके उसकी तरफ आपका ध्यान खिंचवाऊंगी। एक परिवार था, जैसे आप सब परिवार के मेंबर बैठे हैं, एक परिवार था, परिवार एक घर के आगे तीन बुजुर्ग बैठे हुए थे। माता जब घर से बाहर निकली तो देखा तीन बूढ़े बैठे हैं, तो उनको कहती है, आइए, शायद लगता है कि आप दूर से आए हैं, आप मेरे घर में आकर के जल पान ग्रहण कीजिए। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि हम किसी के घर में वैसे नहीं आते हैं जब तक घर का मालिक घर में नहीं होता। जाओ पहले अपने घर में देख के आओ, घर का मालिक बैठा है। तो वो अंदर जाती है और देखती है मालिक भी है, बच्चे भी है, सब घर परिवार में बैठे हैं। तो वो बाहर आई, कहती हाँ मालिक बैठा है, चलो आप हमारे घर में। तो वो कहते हैं कि हम तीनों का अलग अलग नाम है, एक का नाम है प्रेम, दूसरे का नाम है धन, तीसरे का नाम है सफलता। हम तीनों इकट्ठे नहीं जाते हैं, तो आप अपने घर से पूछ के आइए कि पहले कौन आए। फिर वो जाती है, फिर अपने पति से पूछती है कि हमारे घर में पहले कौन आए। तो पति को जब मालूम पड़ता है कि धन है, एक बुजुर्ग धन है, तो कहा धन आ जाएगा तो मेरा घर मालामाल हो जाएगा, फिर कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। तो वो पत्नी जो है उसकी माता, वो कहती है धन तो आना जाना है, वो तो आज है कल चला जाएगा, तो क्यों नहीं सफलता को बुलाया जाए। तो वो कहता है हाँ ठीक है, सफलता भी आ सकती है। परंतु उनकी बहू पास में बैठी थी, वो ज्यादा समझदार थी, वो कहती है कि धन भी आ जाता है, सफलता भी मिल जाती है, पर प्रेम आ जाए हमारे घर में तो बहुत अच्छा है। तो तीनों ने इस बात पर विचार किया, तो कहते हाँ प्रेम आ जाए तो ठीक है। तो वो बाहर जाके बोलती है कि आप तीनों में से जो प्रेम है वो मेरे घर में आए। तो जब उसने ये उच्चारण किया तो तीनों इकट्ठे खड़े हो गए। उसने कहा ये क्या बात, आपने तो कहा था एक एक करके आते हैं। तो वो कहने लगे जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन होता है, वहाँ सफलता होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर चाहते हो निर्विघ्न बनना तो पहले प्रेम करना सीखो। बाबा से तो प्रेम करते हैं, परंतु इंसानों से, परिवारों से, समाज से प्रेम करना सीखो। और जहां प्रेम होगा वहाँ सफलता और धन अपने आप में आएगा। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। जब 7 साल पहले हम चले थे तो हमने उस समय की भी परिस्थितियां अच्छी तरह से मालूम है और आज इसका सुंदर बर वृक्ष की तरह फैलता हुआ रूप देख करके भी लगता है कि सच्ची प्रेम, एक बल और भरोसा और पवित्रता, त्याग और तपस्या ही इसकी आन और शान और मान है। तो अगर अपनी आन मान और शान बनाना चाहते हैं तो प्रेम करना सीखिए, वैराग वृत्ति को लाइए, त्याग और तप को अपना आधार बनाइए और बाबा को अपना सहारा और किनारा बनाइए, रक्षक और पालक बनाइए, साथी और सारथी बनाइए। फिर कोई विघ्न आपके पास आएगा नहीं, आएगा तो ऊपर से चला जाएगा। ऐसी शुभकामनाओं भरी शुभ भावनाएं मैं आप सबको प्रसारित करती हूँ कि आप सबकी बट्टी सार्थक हो और आप अपने साथ इसको लेके जाएंगे। ओम शांति।
प्रभु प्यार की रहमत बरसी, प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। ओम शांति, चली मधुबन में आत्म ज्योत चली है मेरी, आत्म ज्योत चली है मेरी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी काबा। आदि माध्य और अंत
तेरी یادوں کے سائے ہمارے. اوم شانتی.